ओम शांति। हम आप सभी मीठे बाबा के विशेष चुने हुए रत्न हैं। हम आप सब आत्माओं पर भगवान की नजर विशेष रूप से पड़ी है। जब विशेष रूप से नजर पड़ी है तो जरूर हम सब आत्माएं विशेष कल्प पहले बनी थी और अब भी बनेंगी, लेकिन विशेष आत्मा बने पूरे कल्प में देखो तो सबसे विशेष आत्मा कौन सी है? अगर देवताई रूप में देखो तो लक्ष्मी नारायण है और संगम युग पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा भी आत्मा है लेकिन परम आत्मा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा नंबर वन विशेष आत्मा है। तो हम आप सबको भी बाप समान नंबर वन विशेष आत्मा बनना है और उसकी विधि बाप दादा रोज हम आप सबको मुरलियों में बताता रहता है। नंबर वन अर्थात बाप समान बनने की सहज विधि तीन प्रकार से है। एक है चारों सब्जेक्ट्स को धारण कर संपन्न बनना, दूसरा है बाप से सर्व संबंध जोड़ सर्व संबंधों के द्वारा सर्व प्राप्तियां कर संपन्न बनना, और तीसरा है दुआओं के खजाने से संपन्न बनना। तो सबसे सहज पुरुषार्थ का मार्ग है दुआओं के खजानों के द्वारा स्वयं को संपन्न बनाना। बाबा ज्यादातर मुरलियों में ये इशारा देता रहता है कि आपके अंदर कोई विशेषता है या कम है, धारणा भी पूरी है या कम है, योग भी कम है, शक्ति भी कम है, कोई बात नहीं। अगर दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें पास हो जाओ तो सब बातें स्वतः ही आ जाएंगी। जब दुआओं के द्वारा इतनी ऊंची बात बाबा कहता है, फिर ब्राह्मण आत्माएं सदा दुआओं का खाता क्यों नहीं जमा कर पा रही? अर्थात सदा दुआएं क्यों नहीं निकलती? मेरे समझ से इसका दो कारण है। एक कारण कि दुआ देने से या लेने से क्या क्या फायदा है यह बुद्धि में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जहां फायदा बुद्धि में स्पष्ट होता है तो फायदा पुरुषार्थ स्वतः कराता है, प्राप्ति पुरुषार्थ स्वतः कराती है। अनुभव होगा, मान लो कोई दुकानदार है, शाम हो गई थी, दुकान बंद करके घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था, सारा दिन काम करके थक चुका था। इतने में कोई ग्राहक आ जाए जो ढेर सारा माल खरीदने वाला हो, तो उसकी थकावट खत्म हो जाएगी या नहीं? थकावट खत्म हो जाएगी। क्यों? प्राप्ति हुई। तो प्राप्ति पुरुषार्थ स्वतः कराती है। तो दुआओं से क्या क्या प्राप्ति है ये स्पष्ट अनुभव न होने के कारण दुआओं का लेना देना सदा नहीं चल पाता है। दूसरी बात कि दुआएं किसको दें और किस विधि से दें यह स्पष्ट नहीं, किसको दें और किस विधि से दें यह स्पष्ट नहीं। अगर यह दोनों बातें स्पष्ट हो जाएं, तो अनुभव ऐसे कहता है कि दुआओं का लेना देना ये पार्ट सहज चल सकता है। तो पहली बात, दुआओं से क्या क्या फायदा है आप सोचना। पहली बात है, दुआ देने या लेने से पुरुषार्थ सहज बढ़ता जाता है। पहला फायदा, पुरुषार्थ सहज बढ़ता जाता है। दूसरा, सभी कारण का निवारण स्वरूप बन जाएंगे। जो भी कारण हैं, सब कारण समाप्त हो निवारण स्वरूप बन जाएंगे। तीसरा फायदा, बाप दादा से आशीर्वाद मिलेगी। चौथा फायदा, हिसाब किताब खत्म होते जाएंगे। पांचवा फायदा, आपके मार्क्स में पुरुषार्थ की ये एडिशन हो जाएगी। एक तो जो पुरुषार्थ किया वो है, अगर दुआएं उसमें ऐड किया तो डबल प्राप्ति हो जाती है, एडिशन हो जाता है। छठी बात है, दातापन की स्टेज का अनुभव होता है। सातवीं बात है, आपके मूर्ति के द्वारा द्वापर युग में भक्त आत्माएं दुआएं प्राप्त करेंगी। اس کے بعد دعا ایک ایسا تیکھا راکیٹ ہے جو ایک سیکنڈ میں یہاں آپ بیٹھے ہیں لاکھوں مائل دور کسی آتما کے پرتی آپ دعاؤں کا وائبریشنز بھیجتے ہیں تو وہ وائبریشنز راکیٹ کے سامان پہنچ کر اپنا کرتبیہ کرتا ہے. دعا خالی نہیں جاتی. تو جب دعاؤں سے اتنی پراپتی ہے تو دعا نہیں نکل رہی ہے, اس کا کارن ہے دعا دینے کی بدھی نہیں آتی. میجارٹی آتمائیں یہی سمجھتی ہیں, برامن آتمائیں, کہ برامنوں کو دعا دینی ہے اور ان سے لینی ہے, یا منسیہ آتماؤں کو دعا دینی ہے لینی ہے. لیکن پانچ پرکار سے دعائیں دینی ہے اور لینی ہے. جو پانچوں پرکار کی دعاؤں کو دیتا ہے اتھوا لیتا ہے وہ باپ سمان سہش بن جاتا ہے. اس کا دعاؤں کا کھاتا سدا ہی جمع ہوتا رہتا ہے. پہلے پرکار کی ہے باپ سے آشیرواد اتھوا دعا لینی ہے, باپ کو شکریہ ادا کرنی ہے. دوسرا ہے سوئم سے دعا لینی ہے, سوئم کو دعا دینی ہے. تیسری بات ہے پرکرتی کو دعا دینی ہے, پرکرتی سے دعا لینی ہے. چوتھی بات برامن آتماؤں کو دعا دینی ہے, ان سے لینی ہے. پانچویں بات ان جو بھی آتمائیں ہیں, اجانی آتمائیں جو بھی ہیں, ان کو دعا دینی ہے, ان سے لینی ہے. اب پہلی بات ہے کہ باپ سے آشیرواد لینا ہے اور باپ کو شکریہ ادا کرنی ہے. اب بابا سے آشیرواد لینے کی بدھی کیا ہے؟ بابا کس بچے کو سدا آشیرواد دیتا ہے, دعا دیتا ہے؟ آپ لوکک دنیا میں دیکھو, ایک ماں باپ کس بچے کو آشیرواد دیتے؟ مان لو آپ کے گھر میں تین چار بچے ہیں. ایک بچہ ہے جو بہت کماتا ہے, اس کی بدھی بہت تیز ہے, لیکن ایک بچہ ہے جو کم کماتا ہے, بدھی بہت کم ہے, لیکن ماں باپ کا پورا کہنا مانتا ہے. और जो ज्यादा कमाता है माँ बाप का कहना नहीं मानता है, तो दोनों में माँ बाप का प्यार किसके ऊपर ज्यादा होगा? आज्ञाकारी बच्चे पर। तो बाबा से आशीर्वाद लेने की विधि है बाबा का आज्ञाकारी बनना। जितना आप मनसा वाचा कर्मणा, जितना आप आज्ञाकारी बनते जाएंगे उतना आपको दुआएं सहज प्राप्त होती जाएंगी। और भगवान को शुक्रिया किस प्रकार से अदा करेंगे? आपके दिल से बाबा के लिए शुक्रिया कब निकलेगी? जब आपको अपनी महानता का अनुभव होता रहेगा तब निकलेगी। जितना आत्मा को अपनी महानता का अनुभव होगा तब दिल से आएगा शुक्रिया बाबा, आपने तो मुझ आत्मा को क्या से क्या बना दिया, मैं कहां थी और कितना ऊंचा बना दिया। बाबा ने आप हम सब आत्माओं को प्रैक्टिकल में बहुत ऊंचा बना दिया है, लेकिन ऊंचापन का अनुभव क्यों नहीं होता है? बन चुके हो लेकिन महानता का अनुभव क्यों नहीं होता? इसका कारण दो है। एक कारण कि जब तक आप अपने को आत्मक स्वरूप में स्थित नहीं कर पाएंगे तब तक आत्मा को अपने असली गुण और असली शक्तियों की अनुभूति नहीं होती। इसलिए महानता का अनुभव नहीं होता। दूसरी बात, महानता का अनुभव न होने का कारण है कि बाबा ने जो महान बनाया है उसको स्मृति में नहीं लाते हो। अगर स्मृति में लाओ तो शुक्रिया स्वतः निकले। आप देखो वर्तमान समय दुनिया में आप जितना महान कोई नहीं है, इतना महान भगवान ने आपको बना दिया है। इस दुनिया में महान चार प्रकार के लोगों को माना है। एक साइंटिस्ट को बड़ा माना है, दूसरा सन्यासी को बड़ा माना है, तीसरा कोई पद राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर से पद को बड़ा माना है, और चौथा मूर्तियों को बड़ा माना है। इन चार को बड़ा माना है। अब इन चारों से देखो आप बड़े हो या नहीं। उदाहरण के रूप से साइंटिस्ट साइंटिस्ट का देख लो, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट अगर वो खोज करेगा तो कहां तक खोज कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा सूर्य और तारा गण तक, अर्थात पांच तत्वों तक। साइंटिस्ट की खोज पांच तत्वों तक है और आपका ज्ञान जहां साइंटिस्ट के खोज का लास्ट है, सूर्य चांद तारा गण, वहां से आपका ज्ञान शुरू होता है, उनका लास्ट और आपकी शुरुआत। क्या शुरुआत है? कि मैं आत्मा हूं, इन पांच तत्वों का मालिक, अर्थात इस शरीर का मालिक, इस शरीर से न्यारी हूं। मैं आत्मा सूर्य चांद तारा गण के पार ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियों के भी पार परम धाम की निवासी भगवान के साथ रहती हूं। साइंटिस्ट तो स्वप्न में भी वहां नहीं पहुंच सकते। तो आप साइंटिस्ट से बड़े हो या नहीं हो? हो प्रैक्टिकल में ना, जहां साइंटिस्ट स्वप्न में नहीं पहुंच सकते हैं वहां आप आते जाते। इसके बाद सन्यासी को देखो, अगर इस ज्ञान के पहले कोई सन्यासी आता तो आप सिर झुकाते। आप सिर झुकाएंगे? झुकाएंगे नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि उनसे बड़े बन गए हो। सन्यासी के आगे सिर क्यों झुकाते थे? दो बात के कारण, एक त्याग, दूसरी पवित्रता। ये दो बातें सन्यासी में थी, त्याग और पवित्रता। आप अपने से देखो, उनकी पवित्रता शास्त्र मत और गुरु मत के आधार पर है, और आपकी पवित्रता किसके मत पर है? पतित पावन परम पिता परमात्मा की मत पर है। कितनी ऊंची पवित्रता है, कितनी ऊंची मत से पवित्रता अपना रहे हो। उनका त्याग तो लौकिक परिवार वालों का है और आपका त्याग तो सारी दुनिया से। ये देह भी मेरी नहीं है, ये भी शिव बाबा की अमानत है, सेवा के लिए बाबा ने दिया है, इसको हम ट्रस्टी होकर संभाल रहे। आपका त्याग देखो। इसलिए अभी सन्यासी तो क्या, शंकराचार्य ही आ जाए तो भी सर नहीं झुकाएंगे। तो प्रैक्टिकल में बड़े बने हो। पद का देखो, अगर आज राष्ट्रपति कहे आप राष्ट्रपति का पद ले लो और आप ये ब्राह्मण जीवन छोड़ दो, शिव बाबा का हाथ छोड़ दो, छोड़ोगे? तो जरूर राष्ट्रपति से बड़े हो, तब तो नहीं छोड़ रहे हो। उनसे बड़ी प्राप्ति है तब तो नहीं छूट रही है ना। इसके बाद देखो मूर्ति। इस ज्ञान के पहले जहां भी मूर्ति देख देखते सिर झुक जाता था। अब सिर झुकेगा, अब मूर्ति को देखकर आता है, ये तो मेरी ही मूर्ति है, मैं यह बन रही हूं। अगर शिवलिंग को भी देखते हैं तो शिवलिंग देखकर क्या याद आता है, ये शिवलिंग जो परमात्मा का यादगार है, वो शिव बाबा तो साकार में हम बच्चों से मिलने आता है। सोचो वो कहां शिवलिंग और कहां स्वयं परमात्मा मिलने आता है। तो मूर्तियों से महान आप बने क्यों बने? मूर्ति में दो विशेषता थी, एक मूर्ति दाता है, देती है, और दूसरा मूर्ति में दिव्यता है, दिव्यता। और वह दोनों बातें हम ब्राह्मण जीवन में है। जैसे मूर्ति में दिव्यता का अर्थ क्या है, आप देखो, थोड़ा सोचना गहराई से। चाहे राम की मूर्ति हो, चाहे सीता की हो, लक्ष्मी की हो, नारायण की भी हो, किसी की भी मूर्ति हो, लेकिन मूर्ति ही कहते हैं। ऐसे नहीं कि नारायण की मूर्ति को मूर्ति कहेंगे और लक्ष्मी की मूर्ति को मूर्ता कहेंगे, या उनको ऐसा नहीं, दोनों को मूर्ति ही कहा जाता है। इसका मतलब देह भान नहीं है। और वह प्रैक्टिकल अभ्यास, मैं आत्मा हूं, ये अब ब्राह्मण आत्माएं कर रही। तो प्रैक्टिकल में दिव्य हो और दाता तो इतने हो कि पूरे संसार के कल्याण के लिए सोच रहे, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबके लिए शुभ संकल्पों से दान दे रहे। तो अगर यह स्मृति रहे कि बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया है, तो बाबा के लिए दिल से शुक्रिया निकलती रहेगी। प्रैक्टिकल में महान बने हो या नहीं बने हो, बने हैं ना, लेकिन इस बात को स्मृति में लाते रहो। होता क्या है, बन तो गए हैं। बाबा कहता ना, जैसे कोई साहूकार होता है, धन बहुत है लेकिन तिजोरी में बंद करके रख दिया है, तो उसका सुख नहीं मिलता है, खुशी नहीं होती है, क्योंकि बंद पड़ा है। ऐसे आप महान बन चुके हो, लेकिन उस महानता को दबा करके रखा है, उसको इमर्ज करो। तो जितना इमर्ज करोगे उतना भगवान के प्रति आपका रिगार्ड और प्यार और दिल से शुक्रिया स्वतः निकलेगी। और जितना भगवान के प्रति रिगार्ड उत्पन्न होता जाएगा, उतना भगवान पर कुर्बान होने की भावना स्वतः बढ़ती जाएगी। और अगर भगवान पर कुर्बान हो गए तो संपन्न बनने में देरी ही क्या है, फिर तो बन जाएगी। ठीक है, दूसरी बात है, स्वयं को दुआ दो और स्वयं से दुआ लो। जो स्वयं को दुआ देना लेना कर सकता है वो सबको दे सकता है। स्वयं अर्थात आत्मा, आत्मा को दुआ देने की विधि क्या है? आप आत्मा खुद हो, लेकिन खुद आत्मा आत्मा को दुआ दे, क्या विधि है? स्वयं स्वयं को दुआ दो। कब दे सकते हैं? स्वयं को दुआ देने की विधि है जब आप स्वयं को सब खजानों से संपन्न संतुष्ट अनुभव करोगे, तब आपके दिल से निकलेगा वाह रे मैं, वाह मेरा ब्राह्मण जीवन, वाह वाह रे मेरा श्रेष्ठ पार्ट, वाह। तो जितना प्राप्ति के कारण, संपन्नता के कारण, संतुष्टता के कारण जितना वाह वाह स्वयं के लिए निकलता है, इसी को कहा जाता है स्वयं को दुआ देना। और स्वयं से दुआ लेने की विधि क्या है? स्वयं से दुआ लेने की विधि है जितना आप स्वयं को ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर मनसा वाचा कर्मणा चलाएंगे उतना आप स्वयं को दुआ दे सकेंगे। अगर संकल्प में भी अगर आप ईश्वरीय नियम या मर्यादाओं को तोड़ा तो फिर आत्मा को दुआ मिल नहीं सकती। एक है दुआ देना, एक है लेना। तो जो नियम मर्यादाओं से जो दुआएं मिलनी है वो मिलेगी नहीं। थोड़ा सा सीन इमर्ज करो। मान लो आपने कोई नियम मर्यादा को तोड़ा। सीन इमर्ज करो, मान लो कोई भी। उस समय मन की स्थिति क्या होती है? डाउन हो जाती है ना, बाबा से दूर हो जाती है ना, तो फिर दुआ कहां से मिली? कैसे दुआ निकली? तो जितना नियम मर्यादाओं पर चलाएंगे, छोटे से छोटे नियम, छोटी से छोटी मर्यादाएं, जितना आप स्वयं को उसमें चलाते जाएंगे उतना आप स्वयं से दुआ ले सकें। दूसरी बात, स्वयं में आत्मा है और स्वयं में ये शरीर भी है। इस शरीर को भी दुआ देना है और इस शरीर से भी दुआ लेनी। लेकिन मेजॉरिटी देखा गया है ब्राह्मण आत्माएं इस शरीर को बद दुआ बहुत देती। किस प्रकार से? थोड़ी भी बीमारी आती है या कोई धन की परेशानी आती है या कोई समस्या आती है तो क्या संकल्प उत्पन्न होने लगता है कि पता नहीं जब से बाबा के बने हैं तब से हम बीमारी रहना शुरू कर दिया, जब से बाबा के बने तब से पता नहीं कितनी समस्या आ रही है, बुढ़े हो गए हैं तब भगवान मिला है, अब कुछ हम सेवा भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे विचार आना शुरू हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संकल्प याद रखना, ब्राह्मणों का संकल्प अवश्य सिद्ध होता है। जो भी सोचोगे होना जरूर है, क्योंकि ब्राह्मण संकल्प किया वाइब्रेशंस में फैल गया, वायुमंडल में फैल गया। जो संकल्प थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर सोचा है, वो आज नहीं कल होगा, जरूर होगा। क्यों? आप लौकिक दुनिया में देखो, कोई थोड़ा समय पवित्रता अपना लेता है, कोई एक दो नियम पर चलता है, तो उसका भी कहना सत्य होने लगता है, कोई कोई बात। और आप परम पवित्र परमात्मा की मत पर पवित्र आत्मा है, आपका संकल्प खाली नहीं जाएगा। इसलिए इस शरीर के लिए सदा शुभ सोचो। जैसे बाबा एक मिसाल देता है कि लौकिक दुनिया में जैसे कोई घोड़ा वो गाड़ी को खींचता है ना, घोड़ा गाड़ी तांगा क्या कहते हैं, उसको घोड़ा खींचता है। अगर आप घोड़े को बार बार चाबुक मारते जाओ तो क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद घोड़ा तंग करना शुरू कर देगा। और अगर घोड़े को प्यार करते रहो, पीठ थपथपाते रहो, पुचकारते रहो, तो जब तक घोड़े के शरीर में दम है तब तक आपका साथ देता रहेगा। ऐसे इस शरीर को, चाहे बुढ़ा है, चाहे बीमार है, चाहे कैसा भी है, सदा इस शरीर को शाबाश मेरा बुढ़ा शरीर, शाबाश शाबाश, ऐसे इसको शाबाश देते रहो। आप देखो इस बुढ़े शरीर की विशेषता देखना, आपका यह शरीर बुढ़ा हुआ है और इस बुढ़े शरीर में अब आपको भगवान मिला है, जिस भगवान के द्वारा इतनी प्राप्ति 21 जन्म की हो रही है। तो यह बुढ़ा शरीर अच्छा या वो जवान शरीर अच्छा, तो बलिहारी इस बुढ़े शरीर की है या नहीं जो भगवान मिला। इसके बाद देखो इस बुढ़े शरीर का, आंखें कम देखती हैं, चश्मा लगाना पड़ता है, लेकिन इस चश्मे वाली आंख का कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि इस चश्मे वाली आंख ने भगवान के रथ को देखा, भगवान के अवतरण को देखा, भगवान कैसे बोलता है इस चश्मे वाली आंख ने देखा, भगवान कैसे चलता है इस चश्मे वाली आंख ने देखा। वाह मेरे चश्मे वाली आंख, वाह। सोचो जब आपकी आंख बहुत अच्छी थी, चश्मा नहीं था, तब तो ये पता नहीं कबाड़ खाना देखती थी, और अब किसको देख रही है। सोचो, ये कान कम सुनता है, बहरा है, लेकिन सोचो इस कम सुनने वाले कान का कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि यह कान भगवान के महावाक्य सुनता है। सोचो कि इस कम सुनने वाले कान का कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुन रहा है। आप बीमार हो, कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन बीमार में इतनी कमाई कर सकते हो। आप सोचो, अगर आपका शरीर अच्छा होता और अच्छा होकर आप कमाई करते, एक दिन में मान लो 1,00,000 रुपया कमा के ले आते। मान लो आप बीमार हो, वो पैसा नहीं कमा सकते हो, लेकिन अगर बीमार हो, सब तरफ से फ्री हो, मेंटली भी शरीर भी, अगर आप बीमारी हालत में स्वयं को इस शरीर से अलग करके आत्मक स्वरूप में स्थित होकर अगर 5 मिनट भी अगर आपने बाबा को याद कर लिया, तो उस 5 मिनट के याद की कमाई अरब खरब से भी बहुत ज्यादा है। किस प्रकार से, 1,00,000 रुपया खर्च करो तो जो वायुमंडल बनेगा, हवन आदि जो कुछ भी करो, लेकिन 5 मिनट का योग तो प्रकृति को भी पावन बना दिया, जो 1,00,000 रुपया नहीं कर सकती, पावन बना दिया। आपकी आत्मा पावन बन गई, आपके विकर्म विनाश हो गए जो पैसे से नहीं हो सकते थे, तो सोचो कितनी कमाई हो गई। इसलिए कभी भी इस शरीर को बद्दुआ नहीं दो। कैसा भी शरीर है, वाह मेरा बुढ़ा शरीर, वाह मेरा बुढ़ा शरीर, सदा इसको थपथपाते रहो, प्यार करते रहो। आप देखो आपका बुढ़ा शरीर साथ देने लगता है या नहीं देने लगता है। मन का बड़ा गहरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो इस शरीर को दुआ देना अर्थात इसको शाबाश शाबाश देते रहना, और इस शरीर से दुआ लेने की विधि है, इस शरीर के द्वारा आप यज्ञ की कर्मणा सेवा अवश्य करो। चाहे बुढ़े हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, कर्मणा सेवा अवश्य करो। कर्मणा सेवा इस शरीर को बहुत दुआ दिलाती है। अनुभव करके देखो, अनुभव होगा भी। आप थोड़ी बीमारी हो, मान लो हल्का बुखार आ रहा है आपको, आप बाबा के घर में सेंटर पर आकर आप सेवा करके देखो, बुखार हट जाता या नहीं हट जाता है। है अनुभव किसी को, सेवा किया और बीमारी गई? कोई जादू नहीं है। क्यों गई? क्योंकि जो बीमारी थी किसी हिसाब किताब से थी, किसी कर्म का। आपने सेवा किया, हिसाब किताब खत्म हुआ और बीमारी चली गई। आप सोचो, अगर क्लास रूम में आप झाड़ू लगाते हो, तो सोचो तो कहां की झाड़ू लगा रहे हो, किस स्थान का झाड़ू लगा रहे हो। जिस स्थान पर भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुनाए जाते, जिस स्थान को स्वयं भगवान ने सिलेक्ट किया है, जिस स्थान पर भगवान के महावाक्य सुनकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, इतने श्रेष्ठ स्थान की हम सफाई कर रहे हैं, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। सोचो किस स्थान की सफाई कर रहे हो। अगर आप बर्तन मांझ रहे हो बाबा के घर का, सोचो तो कौन सा बर्तन मांझ रहे हो, जिस बर्तन में प्यारे पिता के लिए भोग बना है, जिस बर्तन का बना हुआ भोग स्वयं परमात्मा ने स्वीकार किया हुआ है, उस स्वीकार किए हुए भोग के बर्तन को हम साफ कर रहे हैं, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। सोचो आप इस तरह से इस शरीर के द्वारा यज्ञ की सेवा अवश्य करो और फिर देखो ये शरीर आपको कितना साथ देना शुरू कर देता है। जो बुढ़े हैं जो कहते हो इससे मुक्त हो जाओ। बुढ़ा शरीर कम है मन ज्यादा है। अगर मन सेवा में लगाओ और मन को समर्थ मिले तो शरीर बुढ़ा नहीं रहेगा। तो पहली बात इस शरीर को दुआ दो और दुआ लो। दूसरी बात सदा पॉजिटिव सोचो इस शरीर के लिए, नेगेटिव नहीं आने दो। नेगेटिव बातें आएंगी लेकिन आने नहीं। जैसे उदाहरण के रूप से नेगेटिव को पॉजिटिव में लो। साकार बाबा के समय एक बार एक माता बाबा से मिलने आई। नई नई उसकी शादी हुई थी लेकिन पति मर गया था, विधवा हो गई, तो बहुत दुखी थी। तो जब बाबा गया तो बाबा के सामने इतना रोई कि बाबा ऐसे मेरी हालत होगी क्या, चलो बाबा इस कलप में मैं तो रो धो करके कैसे भी करके स्वयं का तो जीवन पार कर लूंगी। क्या बाबा कलप कलप ऐसे पति मरेगा और मैं विधवा ही होती रहूंगी। ऐसे कहकर बाबा के आगे रोने लगी। बाबा ने कहा बच्ची ऐसा तुम क्यों नहीं सोचती हो कि कलप कलप ये शरीर का पति मरेगा और कलप कलप हमें ही पतियों का पति परमात्मा मिलेगा। बच्ची कितना श्रेष्ठ भाग्य है। सोचो गई थी रोते रोते और आई तो चेहरा खिल गया था। तो सदा पॉजिटिव सोचो तो सदा खुशी रहेगी। ठीक है, तो इस शरीर को दुआ दो और दुआ लो। अच्छा टाइम हो गया है, बाकी तीन कभी देखेंगे। तो ये दो बातें पक्का किया, बाप से आशीर्वाद लेना, विधि है आज्ञाकारी बनना, शुक्रिया देने का आधार है अपनी महानता का अनुभव करना, आत्मा को दुआ देने की विधि है संपन्न संतुष्ट स्थिति का अनुभव करना, लेने की विधि नियम मर्यादाओं में पक्का रहना, इसको दुआ देने की विधि शाबाश शाबाश इसको देते रहना, और लेने की विधि यज्ञ की कर्मणा सेवा अवश्य करना। अच्छा ओम शांति।